अगर दुनिया के अंदर आजमाइश न होती और इम्तिहान न होता तो फिर हमारी जो ये सलाहियत है और हमारा जो ये मलक है, इस मलके का हमें और आपको फ़ायदा भी न होता। किसी भी ज़ात को या किसी भी शख्सियत को उस वक्त तक आप मुकम्मल तौर पर जानते नहीं हैं, مکمل طور پر حکم نہیں لگا سکتے، جب تک آپ اس شخصیت کی آزمائش نہیں کر لیتے، امتحان نہیں لے لیتے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، دنیا اور دنیا کے معاملات، اور اس دنیا میں ہم ایک ایک لمحہ جو گزار رہے ہیں، یہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے اور اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے۔ اور جب صورت حال ایسی ہے کہ ہر انسان کو یہ پیغام نظریہ قرآن کریم کے، نظریہ دین اسلام کے پہنچا دیا گیا ہے، تو اب اس کے لیے جو صحیح تعلیمات ہیں، صحیح رہنمائی ہے، اور ایسی صورت میں کامیابی کا جو بہترین طریقہ ہے، اس طریقے کو جاننا اور اس طریقے پر عمل کرنا، یہ ہمارے دین کی دعوت ہے۔ اور ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل و اکمل دین ہمیں نصیب کر دیا ہے کہ ساری زندگی بچے کی پیدائش سے لے کر ایک بزرگ جو فوت ہوتا ہے قبر میں، اس کی تدفین ہوتی ہے، یا کوئی بھی شخص ہو، نوجوان بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے جو آداب ہیں اور طریقے ہیں، وہاں تک اللہ بزرگ و برکت نے ہماری شریعت میں ایسے حکم ہمیں نازل فرما دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، تعلیم دے دیے ہیں کہ اس میں سے زندگی میں کوئی پہلو، کوئی مرحلہ، کوئی مقام، کوئی خوشی، کوئی غم، وہ شریعت کی تعلیمات کے بغیر نہیں۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے لیے تعلیمات نازل کی، تو ان تعلیمات میں ایک بہت ہی زیادہ اہمیت والی تعلیم وہ اپنے نفس کی ٹھیک کرنا اور اصلاح کرنا، یہ اس کے اندر ایک عظیم حصہ ہے۔ اور انسان کو اصلاح کی ضرورت ہر شعبے میں رہتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ مجھے اصلاح حاصل ہو چکی ہے یا مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فاتحہ کی جو آیات نازل کی ہیں، اس کا جو مقصد ہے اصلی ہے، جو سورت کے نزول کی غرض ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ آپ دکھا دیجیے۔ اور یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کی طلب کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی زندگی کے موقع کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور کسی بھی اس قسم کی شرط کہ یہ شرط موجود ہوگی तो इस्लाह की तलब हो वरना न हो, ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं। सबसे पहला फरीज़ा ईमान है, और एक शख्स जब ईमान के दायरे में दाखिल हो जाता है तो अब इस दायरे के अंदर रहते हुए जहाँ तक वो जा सकता है जाएगा। जितनी तरक्की वो कर सकता है करेगा, जितने आमाल वो कर सकता है करेगा, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकता है करेगा। लेकिन हर मंजिल पे और हर मरहले पे वो सीधे रास्ते की तलब की दुआ करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जो तालीमात दी और आपने सहाबा की जो तरबियत की है और उनकी इस्लाह की है, उसमें भी आपने ज़िंदगी के तमाम शौक़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखा है, और हर हर मरहले पर हर हर मौके पर आपने सहाबा की तरबियत भी की है और उनकी रहनुमाई भी की है। यही वजह है कि हमारे उम्मत को बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत ईमान वाले के हमेशा अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए, और अपनी इस्लाह की फ़िक्र के लिए जो तरीक़े अल्लाह ताला ने हमारे दीन में रखे, जो सूरतें हमारी शरीयत में मौजूद हैं, उनके ऊपर अमल करना ये भी ज़रूरी। अमल का जज्बा, इबादत का जज्बा, नमाज पढ़ने का शौक़, रोज़े रखने का शौक़, हज पर बार बार जाने का शौक़, ये काबिल रश्क है। और ये ऐसा अमल है और ऐसी सआदत है कि अल्लाह ताला जिसको नसीब फरमा देते हैं तो उसका नसीब वाकई अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है। लेकिन इन तमाम इबादतों में और इन तमाम आमाल में इखलास का होना ज़रूरी है, और रियाकारी का न होना ज़रूरी है, तकब्बुर का न होना ज़रूरी है, हसद से दूर रहना ज़रूरी है, गीबत जिसको हदीस शरीफ में जिना के बराबर गुनाह करार दिया गया है उससे दूर रहना ज़रूरी है, चुगलखोरी यानी कि नमीमा, अरबी में नमीमा, उर्दू में चुगलखोरी कहते हैं, इस किस्म के गुनाहों से बचना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स इबादत करता है और वो रोज़ाना 100 रकात नफल की पढ़ता है, लेकिन उसकी जो ये इबादत है और 100 रकात वो जो नफल पढ़ता है उसके अंदर फातिहा भी पढ़ता है, उसके अंदर कुरान करीम की सूरत भी पढ़ता है, नमाज से पहले नियत भी सही से करता है, सजदा भी मुकम्मल सही करता है, रुकू भी खुशू और खुशू से आराम से करता है, कायदा और जलसा भी ठीक से करता है, बज़ाहिर एक नमाज की सेहत के लिए जितनी भी शराइत है वो सारी की सारी उसकी नमाज में मौजूद है, लेकिन एक ऐसी खराबी जिसे रिया कहते हैं या जिसे दिखलावा कहते हैं, वो उस नमाज के अंदर अल्लाह मौजूद है, तो ऐसी नमाज काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ नहीं। और हदीस शरीफ में आपने फरमाया, मन सल्ला नासा, जो शख्स ऐसी नमाज पढ़ता है कि लोग मुझे देखें, फ़कद अशरक बिल्ला, वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क का मुर्तकिब। कोई छोटा गुनाह नहीं है, इस कायनात में जितने गुनाह हैं उन सारे गुनाहों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है वो शिर्क है। अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की रब्बानियत, अल्लाह की खालिकियत, अल्लाह की अजमत और किबरियाई, वो अहद है, वो समद है, और उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। और फिर भी हम उसकी दरगाह में, उसके बारगाह में जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो सजदा कर रहे हैं, जो रुकू कर रहे हैं, उसके अंदर हमने खालिस अल्लाह ताला के लिए नहीं किया है, बल्कि किसी और इंसान की खुशनूदी के लिए या लोगों की तारीफ के लिए या इस किस्म के किसी अमल को हम कर रहे होते हैं, तो ये अल्लाह ताला के साथ शरीक है। और रियाकारी और दिखलावा, ये इतनी शदीद अमल है और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक मकाम पे फरमाया, फ़वैलुल्लिलमुसल्लीन, वो लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वो जो नमाज पढ़ रहे हैं वो युराऊन है, वो दिखलावे के लिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसी नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही, ऐसी नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, और वैल जहन्नम की एक वादी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आमल सिर्फ और सिर्फ अमली काम को नहीं कहते, या बाल्फाज दीगर इबादत सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इबादत एक मजमूआ है। उस मजमूए में जो सबसे पहली शर्त है वो ईमान का सही और दुरुस्त होना है। इसलिए कि अगर ईमान खुदा ना खास्ता सही नहीं है, मजबूत नहीं है, एतकाद और यकीन के दर्जे में नहीं है, तो ईमान के बगैर अमल की कोई कीमत अल्लाह ताला के यहाँ नहीं। काफिर और मुशरिक भी काम करते हैं, नेक वेलफेयर के अमल करते हैं, चंदे वगैरह देते हैं, पूरी दुनिया के उलमा में, अहले दीन में कोई एक शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे कहे कि ईमान के बगैर भी नेक काम करने वाले को अजर मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो ईमान का रासिख होना और ईमान पर ईमान की तरह अकीदा होना ही ज़रूरी है। और फिर जब अल्लाह ताला ईमान की दौलत नसीब कर दें, तो ये इतनी बड़ी दौलत है और इतना बड़ा अल्लाह का फजल है कि दुनिया में मौजूद जितने भी माबूदान बातिल हैं, जितने भी झूठे खुदा हैं, जितने भी बुत हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी किस्म किस्म की चीज़ें हैं कि एक इंसान उनके सामने झुकता है, आपके ईमान की बरकत से अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से आपकी जान छुड़ा देते हैं। और एक अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के बंदे वो नहीं होते। और जब ये दौलत हासिल हो जाती है तो फिर इस दौलत के साथ अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको अमल का जज्बा दिया है, फिर उसका खालिस अल्लाह ताला के लिए होना ये हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ अमल ऐसे होते हैं कि वो हमारी इबादतों को जला देते हैं और हमारे नेक आमाल को ख़राब कर देते हैं। उन आमाल से बचना इतना ही ज़रूरी है जैसे हम दुनिया में आग से बचते हैं। मिसाल के तौर पे हसद, अल्लाह ताला ने सूरह फलक में जिन बलाओं से इंसान को पनाह मांगने की तरदीब दी है और जिन बुरे कामों से इंसान को पनाह मांगने का हुक्म दिया है, उनमें से हसद भी। और हसद ये हकीकत में तकब्बुर की एक किस्म है कि एक इंसान को जब हसद होता है और एक इंसान को जब किसी और की तरक्की से तकलीफ होती है, किसी और पे अल्लाह के फजल से इसको परेशानी होती है, किसी और के आगे बढ़ने से इसको ये बात बुरी लगती है, तो हकीकत यही है कि हासिल वो असल में मुतकब्बिर है और वो ये तकब्बुर की आग में मुलव्विस है कि ये जो तरक्की हुई है ये मेरी क्यों नहीं हुई है, और ये जो अल्लाह ने फना शख्स के ऊपर फजल किया है, करम किया है, ये सारी के सारे फजल करम मुझ पर नहीं हुए हैं, जब मुझ पर नहीं हुए हैं तो किसी और पर होना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये बात गलत है। हमारे भाई लोग उनमें जो बहुत सारी कमियां कोताहियां मौजूद हैं और इंसान में कमी कोताही होती है, इसीलिए तो इस्लाम का बाब इतना वसी है। अगर इंसान पहले से ही 100% आबिद होता, जाहिद होता और इसकी इस्लाह हो चुकी होती तो फिर इस्लाह की ज़रूरत नहीं थी और तालीमात की ज़रूरत नहीं थी। यही वजह है कि हमें इस एतराफ़ करने में कोई मुश्किल न हो कि जैसे इंसानों में कमी होती है, गफलत होती है, ख़ताएँ होती हैं, ऐसी ख़ताएँ हम में भी मौजूद हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हमारी शरीयत की तालीमात है और इसका इलाज कुरान और सुन्नत है और इसका इलाज सहाबा और ताबईन और आइमा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की तालीमात, जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगियां इस्लाम की तालीमात के महफूज करने में और इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाने में उसकी इशाअत और नशर में लगा दी। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अल किब्रिया रिदाई, जो बड़ाई है, जो तकब्बुर है, ये अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला के ओढ़ने की चादर है, और इस चादर में अल्लाह के सिवा कोई और घुसने की कोशिश करता है या अल्लाह के साथ उस सिफत में शरीक होने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको हरगिज़ इस अमल में कामयाब होने नहीं देते। और किस बात का तकब्बुर, किस बात का हसद, किस बात की चुगली, किस बात की गीबत, ये आमाल या ये हरकतें वो ज़ात करे कि जिसको खुद इस किस्म के आज़ार दरपेश ना हो। एक इंसान जो खुद खाना भी खाता है, भूख भी लगती है, बीमार भी होता है, और उसको नींद भी आती है, और उसको आज़ार भी पेश आते हैं, सारी की सारी वो खराबियाँ जो दूसरे इंसानों में वो देख रहा होता है, वो खराबियाँ उसके अंदर खुद भी मौजूद। तो हमें दूसरों के ऊपर उंगलियाँ उठाने से बहुत ज़्यादा बेहतर हमारे लिए ये है कि हम अपने आमाल पे तवज्जो दें और हम ऐसा रवैया अपनाएं कि हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की हो कि आया हम जो अमल कर रहे हैं, हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कमी तो नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह ताला की नाराज़गी तो नहीं है, इसमें कहीं हदीस और सुन्नत की खिलाफ वर्जी तो नहीं। और फिर सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, एक शख्स को पता हो कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ और उसके बावजूद वो गलत रास्ते पे चलता रहे तो मंजिल मकसूद पे पहुँचना उसके लिए मुमकिन नहीं है, अगरचे उस पास को ये बात मालूम। हाँ, जब ये बात पता चल जाए कि रास्ता दुरुस्त नहीं है और फिर सही रास्ते का तायुन कर ले, अपनी सिमत को दुरुस्त कर ले, उसके बाद जो वो चलेगा तो अल्लाह के फजल से मंजिल को पहुँचेगा। तो इसीलिए हमने बड़ी बड़ी इबादतों का जिक्र किया है और हम बड़ी बड़ी इबादतों के अल्लाह के फजल से शौकीन भी हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है, उम्मत में अमल का जज्बा भी मौजूद है, लेकिन इन इबादतों के लिए जो जहर है, इन इबादतों के लिए जो दीमक है और इन इबादतों की कबूलियत को जो चीज़ें रोकती हैं, उसमें तकब्बुर है, उसमें हसद है, उसमें गीबत है, उसमें रियाकारी है, उसमें लोगों के बारे में बदगुमानी है, इन चीज़ों से बचना ये ज़रूरी। और फिर हर शख्स ये दावा करता है कि मैं और मेरी जो ज़ात है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और मेरी हर बात 100% दुरुस्त है और मेरा हर अमल 100% ठीक है, यह खुद पसंदी है। बल्कि हमारे जो बुज़ुर्ग और असलाफ आइम्मा और सहाबा गुज़रे, उनमें अल्लाह ताला ने कबूल हक की ऐसी सलाहियत रख दी थी कि सहाबा एक दूसरे की इस्लाह करते थे। और हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा जब आप अमीरुल मोमिनीन बने और खिलाफत आपके हवाले की गई, उस पे आपने जो खुतबा दिया है, उस खुतबे में आपने फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, मैं अल्लाह की ज़िम्मेदारी खिलाफत संभाल रहा हूँ, इसको लेके आगे चलूँगा, और तुम में से जिस शख्स को ये लगे कि मैं सीधे रास्ते पर नहीं हूँ और मेरा रास्ता टेढ़ा हो रहा है, उसमें ख़राबी आ रही है, तो तुम में से हर शख्स को ये इख्तियार देता हूँ कि वो आए और मुझसे बात करें और मुझे बताए कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, उस गलती को ठीक करेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई आम आदमी नहीं है। कुरान करीम में 22 जगह पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं कि उन आयतों में अल्लाह ताला ने उसी राय को तरजीह दी है जो राय हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की होती थी। अल्लामा सुयूती ने अल यवाकीत व तमर फी मुवाफ़क़ात उमर के नाम से किताब लिखी है और उस किताब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं, आपको अल्लाह ताला ने जिन ख़ुसूसियात से नवाजा है उसका तफसीली ज़िक्र मौजूद है। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह हमारी शरीयत में तवक्कुल की बड़ी फजीलत है और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करते हैं, कुरान की आयत में मौजूद है। अब हमारे लोग वो या तो तवक्कुल को गलत इस्तेमाल करते हैं और अगर उनको तवक्कुल की तारीफ और तवक्कुल के आदाब और तरीक़ा समझा दिया जाता है तो फिर वो आमाल को छोड़ देते हैं, असबाब को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तवक्कुल करते हैं। तो जिस तरह ये छोटी छोटी जो बज़ाहिर आदतें हैं इनसे हिफाजत अपने आमाल की ज़रूरी है, इसी तरह तवक्कुल के बाब में भी सही रास्ते पर चलना ज़रूरी है। हदीस शरीफ में आता है कि एक सहाबी ने आपसे पूछा कि मैं जब किसी काम में मशगूल होता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ या कोई अमल करता हूँ तो मैं अपनी ऊँटनी को बांध कर जाया करूँ या ऐसे ही खुला छोड़ दूँ और तवक्कुल करूँ कि जो अल्लाह ताला चाहेगा वो होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया कि नहीं, अपनी ऊँटनी को पहले बांधो और उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करो, उसके बाद जो तवक्कुल होगा ये है वो तवक्कुल जिसकी अल्लाह ताला ने हमें और आपको तालीम दी है और जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो मतलब क्या हुआ कि असबाब को इख्तियार कर लेना जायज़ हद तक और ऐसे तौर तरीक़ों को इख्तियार कर लेना जिसमें हमारे और आपके लिए भलाई मौजूद है, ये तवक्कुल का लाजमी जुज़ है। एक शख्स बीमार है और उसको डॉक्टर दवा खाने का कहता है और बीमार कहता है कि नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगा बल्कि मैं तवक्कुल करूंगा, ये तवक्कुल नहीं है। एक शख्स को फौरी तौर पे इलाज की, ऑपरेशन की ज़रूरत है और वो कहता है कि नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाता हूँ बल्कि मैं तवक्कुल करता हूँ, ये तवक्कुल नहीं है। बल्कि तवक्कुल की अव्वल शर्त ये है कि एक शख्स अपने ज़िम्मे पे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह ताला ने माशरे में जो उसके लिए काम चुन लिया है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, जो उसकी ड्यूटी है, वो ठीक ठीक से कर ले और फिर उस ज़िम्मेदारी और उस ड्यूटी में अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पे मेहनत करके, कंट्रीब्यूशन करके, उसके बाद जो नतीजे हैं उसके बाद जो मतलूबा फवायद हैं उनका हासिल होना वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक तवक्कुल करे तो ये ठीक है। हमारे लोग या तो इफराद का शिकार हो जाते हैं या तफरीद का शिकार हो जाते हैं। कोई तो कहता है कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, मैं किसी किस्म की टेंशन नहीं लेता हूँ, किसी किस्म की फिक्र नहीं करता हूँ, और जो कुछ होगा होगा, देखा जाएगा, और अपनी इस सुस्ती को और अपनी इस जहालत को वो तवक्कुल कहते हैं, तवक्कुल नाम देते हैं, ये बात गलत है। और कुछ लोग जैसे आजकल हमारे और आपके कौम में लोग परेशान हैं और मुश्किल में हैं, और वो क्या कहते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र है, हमें अपनी मुस्तकबिल की फिक्र है, हमें अपने बाल बच्चों की फिक्र है, हमें अपने आने वाली नस्लों की फिक्र है, और इतनी दूर दूर की टेंशनें और परेशानियाँ वो अपने सर पे ले लेते हैं कि इंसान सोचता है तो हैरानगी होती है। तो ना हमने ऐसा जाहिल बनना है कि हमारी आंखों के सामने आग जल रही हो, घर जल रहा हो, लोगों को नुकसानात हो रहे हो और हम आंखें बंद करके बैठे हों और हम कहते हों कि जी हमने तो तवक्कुल किया है, ये तवक्कुल गलत है। बल्कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हमारी शरीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इस कदर तवक्कुल होता तो फिर अमल बिलमारूफ की ज़रूरत नहीं थी, और इस कदर अगर बेफिक्री होती तो नहीं अनिल मुनकर की ज़रूरत नहीं थी। और ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हदीस शरीफ में फरमाया और सही हदीस है, तकरीबन मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर हदीस का हुक्म वही होता है जो कुरान करीम की आयत का होता है। आपने फरमाया तुम में से जो शख्स देखे कि अल्लाह ताला की तालीमात की खिलाफ वर्जी हो रही है और दीन और शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उस सूरत में अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हो और माशरे में, जगह में, मकाम में आपकी इतनी कदर व मंजिलत हो कि आपके रोकने से वो अमल रुक जाता है, तो उसका रोकना ईमानी फरीजा है। बाप देख रहा है घर में बेटे और बेटियां गलत किस्म की हरकत में मुलव्वस हैं और बाप खामोश है, बाप चुप है, और वो किसी किस्म का ऐसा अमल नहीं कर रहा, रोकथाम की कोशिश नहीं कर रहा, तो गुनाह में शरीक है। और अगर हाथ से रोकना मुमकिन नहीं तो लिसान से, जबान से रोकना, दो कलिमात कह दीजिए कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, आप जो अमल कर रहे हैं, आप जिस किस्म के रविश में मुब्तला हैं, ये हमारे दीन में महबूब नहीं है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होते हैं, ये बात करना ये भी ज़रूरी है और ये ईमानी फरीज़ा है। और अगर इतने मजबूर हैं और इस कदर आप पाबंद हैं कि ज़बान से कहना भी आपके लिए मुमकिन नहीं है, फ़बिकल्बिही, तो फिर दिल से उसके बारे में नापसंदीदगी ज़ाहिर करना, गुनाह पे खुश न होना और इस किस्म की चीज़ों से दूरी इख्तियार करना, ये भी ईमानी फरीज़ा है। तो अब आप बताइए कि अगर हमारे दीन इस्लाम की तालीमात में इस्लाह और तरबियत की इतनी बड़ी फिक्र न होती बल्कि हर चीज़ पे हम तवक्कुल कहते और तवक्कुल करते, तो ये सारी तालीमात की ज़रूरत थी नहीं थी। तो इसलिए हमारे अमल में तवस्सुत होना ज़रूरी है। اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنا دیا ہے. سورہ بقرہ میں سیقول کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی قوم بنا دیا ہے جو میانہ روی والی ہے. میانہ روی اختیار کرنے والی قوم ہے. تو میانہ روی میں ہر چیز کے اندر میانہ روی کرنا ضروری ہے. ایسا عمل کہ جس عمل میں ہمیں نقصان ہو رہا ہو اس کے بارے میں فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے. عبادت ہو رہی ہے تو عبادت کی حفاظت بھی ضروری ہے, اور عبادت ہو رہی ہے تو اس عبادت کے لیے جو نقصانات ہیں, جو اس کے لیے دیمک ہے, جو اس کے لیے زہر ہے, خواہ وہ حسد ہے, خواہ وہ ریاکاری ہے, خواہ وہ تکبر ہے, خواہ وہ چغلخوری ہے, خواہ وہ غیبت ہے, خواہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط گمان رکھنا ہے, یہ ساری جو عادتیں ہیں, یہ ساری جو بری صفات ہیں, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. اور پھر جو آپ عمل کرتے ہیں, جو آپ کوشش کرتے ہیں, جو آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادتیں, دعائیں, نمازیں, روزے, صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, اس کے اوپر اس گھمنڈ میں ہونا کہ ہر حالت میں یہ قبول ہوگی اور میں تو جنت کا ٹھیکہ لے چکا ہوں اور اب میں نے تو اتنی رکعت نوافل پڑھ لی ہے لہٰذا اب سب کچھ دنیا میں میرا ہے, یہ سوچ بھی غلط ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان, اس کے اندر خوف کا ہونا بھی ضروری ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو, کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں میں مردود نہ ہوں, کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے نصیب میں نہ ہو. اور رجا, امید بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ غفور ہے, میرے جتنے بھی گناہ ہیں, میری جتنی بھی خطائیں ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اس سے میں مایوس نہیں ہوں. اور پھر اپنے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ کا جو عمل ہے, دنیا کے جو جائز اسباب ہیں, ان کو اختیار کیجئے, ان میں کوشش کیجئے, خوب شوق سے پڑھیے, خوب شوق سے تعلیم حاصل کیجئے, خوب شوق سے ہنر سیکھیے, اور خوب شوق سے آگے بڑھنے کا جذبہ لے کر اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب آگے آپ کی محنت کے باوجود جو مقامات, جو مرتبے, جو منزلیں آپ کے نصیب میں مقدر کر دیے ہیں, اس پہ راضی رہیے, اس پہ خوش رہیے. دور دور کی امیدیں اور دور دور کی آرزوئیں, بڑی بڑی خواب دیکھنا دنیا کے چیزوں میں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق.
مشکل ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں ایک ہاتھ سے
ایک مرتبہ کھو جانے کی اجازت موجود ہے، البتہ اگر کوئی اتنی زیادہ مشکل خارج نہیں ہے کہ نماز اس کے بغیر ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں نماز کے اندر کھو جانا مکروہ ہے، احتیاط کیجیے گا۔ پوچھا ہے کہ اشراق چاش کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اشراق کی نماز دو رکعت پڑھیں گے، اور اشراق کا وقت فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو چکا ہو، طلوع ہو رہا نہ ہو بلکہ طلوع ہو چکا ہو، ایسی صورت میں دو رکعت نماز اشراق کی پڑھیں گے۔ اب یہاں سے ایک گھنٹے کے بعد سے لے کر نصف النہار زوال سے پہلے ایک صبح صادق ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک طلوع شمس ہوتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کے درمیانی جو وقت ہے اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ نصف النہار سے پہلے پہلے چار رکعت اکٹھی چاش کی نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون سے عمل کا ثواب پیش کرنا زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی آپ اپنی طرف سے عقیدتیں بھیجیں، ثواب بھیجیں، تو درود شریف سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ جب بھی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی طرف سے کوئی گلدستہ جائے، کوئی ہدیہ جائے، تو درود شریف کا ہوگا تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تمام قسم کے اعمال جائز تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امت کو آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اپنی عقیدتیں بھیجتے ہیں، اس سے ہمارے اعمال کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ رات میں وتر کی نماز رہ گئی اور جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، پہلے فجر پڑھوں یا پہلے وتر پڑھوں؟ پہلے وتر پڑھ لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوری طور پہ سب سے پہلے تین رکعت وتر کی قضا پڑھ لیں، اس کے بعد دو رکعت فجر کی فرض پڑھ لیں۔ سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت بعد میں پڑھیں گے۔ پوچھا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اہل کتاب سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے، بشرط یہ کہ جن سے کہ نکاح ہو رہا ہے وہ واقعی اہل کتاب میں سے ہو۔ آج کل اہل کتاب اصلی نسلی قسم کے وہ نایاب ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، اصل میں یہ نامذہب ہیں، اصل میں ان کا مذہب، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نامذہبوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں واقعتا کوئی اہل کتاب میں سے ہے اور وہ اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، رکھتی ہے اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتی ہے، تو پھر اسلام نے ایسے اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نکاح سے پہلے آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ نہ ہو کہ آپ بھی ان کے ساتھ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، یہ بہت بڑی تباہی اور خطرہ ہے۔ یا آپ کے بچے جو مستقبل میں ہوں گے وہ کون سے مذہب پہ ہوں گے، کیا ان کی تربیت ہوگی، یہ ساری صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس زمانے میں اس قسم کے نکاح سے منع کیا ہے، لیکن جائز ضرور ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ ہو۔ بعض مؤذن اذان کے کلمات کو لمبا کرتے ہیں جبکہ تجوید میں اتنے طویل مد نہیں ہیں، تو کیا ایسی اذان دینا درست ہے؟ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہے مد بہا صوت کا، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے دو اور آواز کو کھینچو، اس کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب تک کلمے کے اندر تغیر نہ ہو، 10 مد تک طویل کرنا قاعدہ تجوید اور قاعدہ قرآت کے مطابق ٹھیک ہے، اس لیے اذان کو طویل کرنا یا کھینچنا مناسب حد تک یہ سنت ہے، اور اذان کو اتنا چھوٹے کلمات کے ساتھ کہنا کہ وہ اقامت لگ رہی ہو یہ مکروہ ہے، دونوں کے درمیان میں فرق ہو واضح ہے.
اللهم تعالى على خير خلق